के लिए बाहर से सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, किंतु यहां हम पाते हैं कि देवताओं की स्त्रियों की शारीरिक सुगंधि से नदियां, झीलें तथा वायु तथा त्रिकूट पर्वत का सारा वातावरण भी सुगंधित हो उठता है। चूंकि उच्च लोगों की स्त्रियों के शरीर अत्यंत सुंदर होते हैं, अतः हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि वैकुंठ की स्त्रियों या वृंदावन की गोपियों के शरीर कितने सुंदर रहे होंगे। ओम अज्ञानस्तमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य श्रीरूपं साकृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब अपनों का हार्दिक स्वागत है आज की भागवत क्लास में। अभी नए वर्ष में नया प्रसंग शुरू हुआ है, गजेंद्र का संकट, और ये जो आगे तीन अध्याय में इसका वर्णन होगा, ये हम सब साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसमें शिक्षाएं हैं। जिस रंग से गजेंद्र अपने परिवार के साथ त्रिकूट पर्वत पे आते हैं, ये त्रिकूट पर्वत का वर्णन बहुत अद्भुत है। इसमें तीन चोटियां हैं, सोने की, चांदी की और लोहे की, और इसमें इसकी ऊंचाई 10,000 योजन 80,000 मील है, और इसकी घाटियों में ऋतुमत नामक उद्यान है, और उसमें सुंदर सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार से इस ऋतुमत उद्यान में कितना ऐश्वर्य है। कैसा ऐश्वर्य है कि उसकी नदियां तथा झीलें जिनके तट बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके रहते हैं, और उनका जल मणियों की भांति निर्मल है, और यहां पे इनके जल में देवता लोग उनके अप्सराओं के साथ स्नान करने आते हैं, और उन अप्सराओं के शरीर से जो सुगंध निकलती है उससे पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो ऐसे वातावरण में गजेंद्र भी आते हैं और मादा हाथियों के साथ और स्नान कर रहे होते हैं, तभी एक घड़ियाल उन पर आक्रमण करते हैं और हजार वर्ष तक युद्ध होता है, और फिर वो हाथी पूर्व जन्म की उनकी प्रार्थनाओं को याद करता है और भगवान को पुकारता है। तो बहुत बहुत ही शिक्षात्मक प्रसंग है, और श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब भक्तों को कुछ प्रार्थनाएं याद रखनी चाहिए जिससे कि संकट के समय हम भगवान को पुकार सके। लेकिन आज के प्रसंग में माना जाएगा कि हम चर्चा करेंगे कि हाथी संकट में फंसा कैसे। तो श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि पृथ्वी लोक में जीव सामान्यता अपने शरीरों के दुर्गंध रोकने के लिए बाहर से सुगंधित पदार्थ लगाते हैं। अब हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फेमस परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स किस देश के हैं? फ्रांस के। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां लोग नहाते नहीं है। एज सिंपल एज दैट, वहां लोग नहाते नहीं है। एक बार हिजोरिनस राधा गोविंद साई महाराज बता रहे थे कि वो कहीं शायद इंग्लैंड में या यूरोप में कहीं एयरपोर्ट पे प्रतीक्षा कर रहे थे, तो तभी कोई व्यक्ति आया उनसे मिलने, आप बोले आप कहां से हैं? उन्होंने बोला हम इस्कॉन से हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला, विदेशी ने, अच्छा अच्छा इस्कॉन यानी कि जो हमेशा नहाते रहते हैं लोग। वह परेशान हो जाते हैं, हम लोग जहां भी यहां रहते हैं इस्कॉन के डिवोटी यहां में जाते हैं, तो दिन में कम से कम दो तीन बार सबका नहाना हो ही जाता है। तो विदेशों में बड़ी अजीब सी बात है, इतने वाले क्यों नहाते हैं, वहां तो नहाते नहीं, नहाना एक बड़ा उत्सव है, कभी नहा लिया हफ्ते में एक बार। और फिर ना नहाने का जो दुर्गंध आती है, उतने अच्छे डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स हैं, उससे अपने शरीर के दुर्गंध को रोकते हैं। और हम लोग कहते हैं कितना अच्छा परफ्यूम है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य जानेंगे तो मालूम चलेगा। तो ये भौतिक संसार की ऐसी सुंदरता है, लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों की तरफ बढ़ते हैं, ये सुंदरता बढ़ती जाती है। अप्सराओं की सुंदरता, जब अप्सरा और देवतागण पृथ्वी के मिस यूनिवर्स इत्यादि को देखते हुए, तो क्या कहें, मतलब देखना भी नहीं चाहते होंगे उनको, कोई उनकी सुंदरता नहीं है। और इसी ढंग से जो वैकुंठ निवासी देवताओं की सुंदरता से कोई आकर्षण नहीं, कुछ भी कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो प्रभात कह रहे हैं कल्पना कीजिए, अगर अप्सराएं इतनी सुंदर हैं, देवतागण इतने सुंदर हैं, तो वैकुंठ लोक के निवासी कितने सुंदर होंगे। तो आज हम यही चर्चा करते हैं कि असली सुंदरता क्या है, और हम कैसे सही रूप से सुंदर बन सकते हैं, और किस प्रकार की सुंदरता से हमें आकृष्ट होना चाहिए। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सुंदर ना दिखना चाहता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, और जो कोई सुंदर चीज ना देखना चाहता हो। हम सब सुंदर दिखना भी चाहते हैं और सुंदर देखना भी चाहते हैं। पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसलिए चल रही है कि हम अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता बनाए रखें। कई फिल्म स्टार्स हैं जो एवरग्रीन रहना चाहते हैं, कई एवरग्रीन कहलाते भी हैं, और समय समय पर ऑपरेशन कराते रहते हैं, यहां का मांस उठा के यहां पर, वहां का मांस उठा के यहां पर, कभी नाक सीधी करा रहे हैं, कभी छाती ठीक करा रहे हैं, कभी क्या ठीक करा रहे हैं, किसी ना किसी ढंग से हम सुंदर दिखे। और आजकल तो आप देखते हैं कि हमारे पंजाब के बाहर मार्केट में हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स हैं, है ना, कैसे एक एक बाल उगाना एक लाख रुपए का एक बाल पड़ जाता है, एक एक बाल एक एक लाख रुपए का पड़ जाता है उगाने के लिए, और पता नहीं खोपड़ी में कितने इंजेक्शन लगा जाते हैं, तब एक बाल का बीज थोड़ा सा अंकुरित होता है, व्यक्ति बहुत खुश होते हैं, खास एक बाल आ गया मेरा। बहुत बड़ी साइंस का डेवलपमेंट हुई कैसे बालों को उगाया जाए, जबकि बालों को शास्त्र में बताया गया है ब्लैक स्टूल, काले अमल, लेकिन कलयुग में है लावण्यम केश धारणम, जिसके जितने बड़े बाल होंगे उतना सुंदर माना जाएगा। तो कितना खर्चा हो रहा है, कितना लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, लेकिन हम देखते हैं ये शरीर दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण ढल रहा है। काल भगवान की क्षय शक्ति है जो सब चीज खा रही है, तो कैसे हम सुंदरता बनाए रख सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम लोग इतने सुंदरता से आकर्षित क्यों हैं, क्यों हम सुंदर वस्तुओं को भी हमेशा दिखना चाहते हैं और खुद भी सुंदर दिखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो हम सब वास्तव में आत्मा है, और आत्मा हमेशा स्वाभाविक रूप से सुंदर है। कृष्ण परम सुंदर है और हम उनके अंश हैं, हम भी सुंदर हैं, इसलिए क्योंकि हम हमारा कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, इसलिए हर सुंदर वस्तु के प्रति हम आकर्षित होते हैं। सुंदरता अपने आप में एक ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य यानी कि जो आकर्षित करे ना? भगवान पूर्ण रूप से ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से पूर्ण है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, सुंदरता एक ऐश्वर्य है, इसलिए हम सुंदरता से आकर्षित रहते हैं क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश हैं। लेकिन हम जानते नहीं कि वास्तविक सुंदरता को कैसे ढूंढा जाए। सुंदरता हमें आकर्षित ही नहीं करती, सुंदरता हमें प्रेरित भी करती है। आप देखेंगे कोई अगर स्थान बहुत सुंदर है तो हम उसको गंदा नहीं करेंगे, है ना। बचपन में हम स्कूल में जब होते थे तो मुगल गार्डन्स में ले जाया करते थे पिकनिक के लिए, प्रेसिडेंट हाउस मुगल गार्डन्स, बहुत सुंदर एकदम, वहां किसी की हिम्मत मिली होगी वहां जाके एक पॉलिथीन का पैकेट फेंकते थे, उसकी सुंदरता को व्यक्ति बनाए रखेगा। और कहीं इधर उधर घूमेगा अपने कॉलोनी के लोकल पार्क में, सब गंदगी फैली तो, और खाएगा पिएगा वहीं गंदगी फेंकेगा। तो जो सुंदरता होती है वो प्रेरित करती है कि सुंदरता को हम बनाए रखें। और दूसरा, ये सुंदरता उस व्यक्ति को नियंत्रित भी कर लेती है, कंट्रोल भी करती है। देखा जाता है कि वास्तविकता में देखा जाए मानव समाज में जहां सुंदरता की बात आती है तो सुंदरता को हम स्त्री से जोड़ते हैं, सुंदर स्त्री, और मनुष्य मानव पुरुष जब स्त्री की सुंदरता से आकर्षित भी होता है, उससे प्रेरित भी होता है, उसे नियंत्रित भी होता है। और जब वो नियंत्रित होता है तो उसको लगता है कि मैं इसके वश में हूं, जैसे कि भागवत में चौथे स्कंध में बताया गया है वुमेनाइजिंग यानी स्त्री के पीछे भागना लंपट व्यवहार को एनिमल हंटिंग के समान बताया गया, पशु के शिकार के समान, यानी कि वो पुरुष स्त्री को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है कि इसको मैं भोग करूं, इसका शोषण करूं और इसको समाप्त कर दूं। तभी आप देखते हैं आजकल इतने बलात्कार हो रहे हैं, स्त्री की सुंदरता से मनुष्य मोहित हो जाता है और क्योंकि अब उसको देखता है अब इसका शोषण करना है, इससे आकर्षित हो अब इसका शोषण करना और इससे मुझे नियंत्रित कर रखा है और शोषण करने के बाद इसका नाश कर दे रहे हैं। तो ये देखिए पूरे समाज में ये संकट की घड़ी है। गजेंद्र भी अपने पत्नियों से आकर्षित था सुंदरता से और उसी सुंदरता का भोग करने के लिए वो इस घाटी में आया और घड़ियाल ने उसको पकड़ लिया। हम सब जीव भी इस संसार की झूठी सुंदरता से आकर्षित है, तभी संसार को मैथुन आकार बोला गया है और हमें भी घड़ियाल में पकड़ हो गया है और जब तक हम भगवान को पुकारेंगे नहीं हमारी भी मुक्ति असंभव है। तो मनुष्य जीवन का यह लक्ष्य है कि झूठी सुंदरता से आकर्षित ना होकर वास्तविक सुंदर वस्तु से हम अपना आकर्षण बढ़ाएं। श्रीला प्रभुपाद जी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान उसमें एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखते हैं ट्रूथ एंड ब्यूटी सत्य और सुंदरता। प्रभुपाद ने आर्टिकल पहले जब बैक टू गॉड हैड मैगजीन शुरू की थी, जब मैगजीन में नहीं होता था टेबल आर्ट पेपर में आता था, 1958 में इसको छापा था। देखिए प्रभुपाद जी का क्या दृष्टिकोण क्या विजन है। 1958 में प्रभुपाद ने आर्टिकल लिखा था और फिर दोबारा से यही आर्टिकल फिर साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में आया। तो वहां प्रभुपाद जी बताते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं सुंदरता और सत्य में कोई समन्वय नहीं है, सत्य को अक्सर बड़ा अनप्लेजेंट बताया गया, कड़वा बोला जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं सत्य और सुंदरता में पूरा समन्वय है, वास्तव में जो परम सत्य है वो बहुत सुंदर है, लेकिन अक्सर लोग ये जानते नहीं क्योंकि संसार में प्रभुपाद लिख रहे हैं 99.9% लोग असत्य की ओर भाग रहे हैं और उस असत्य को सत्य मानते हुए वो असत्य की ओर भाग रहे हैं। सत्य असत्य सत्य करें माने और यही पूरे संसार की समस्या है। वो असत्य दिखने में सत्य के समान लगता है क्योंकि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब है और इस तरह के संसार की सुंदरता से जब आकर्षित होते हैं तो वो अनुभव इतना मधुर नहीं होता। इसलिए सत्य और सुंदरता में लोग अक्सर कहते हैं समन्वय नहीं है, सत्य संसार में हमेशा कड़वा ही दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में जो परम सत्य है वह सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो सत्य है, सत्य मीन्स जो भूतकाल में वर्तमान में और भविष्य में जिसमें कोई विकार नहीं आए एक जैसा ही रहे वह है परम सत्य। शिवम यानी कि मंगलकारी है, वो सुंदर है। इस संसार की सुंदरता ना तो सत्य है क्योंकि उसमें बदलाव आता रहता है और ना ही ये मंगलकारी है। किसी भी कोई सुंदर वस्तु को देखते हैं ये हमें उत्तेजित कर देती है और ये द्वेष उत्पन्न करती है और इसके कारण कितने अपराध भी होते हैं, क्राइम भी हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुंदरता मंगलकारी है। तो प्रभुपाद जी इसके विषय में बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था जो दिखने में बहुत बलवान और सुंदर, इसका चरित्र इतना अच्छा नहीं था। वो एक युवती से आकर्षित हो जाता है जो कि युवती बहुत सुंदर भी है साथ साथ में बहुत साध्वी चरित्र की है। तो ये व्यक्ति उस स्त्री को बोलता है कि मैं आपसे संबंध स्थापित करना चाहता हूं। स्त्री चाहती है कि मैं उसको कुछ सबक सिखाऊं, तो बोलते ठीक है एक सप्ताह प्रतीक्षा कीजिए। वो चाहती है कि इसको मैं अपनी सुंदरता से नहीं परम सत्य की सुंदरता से आकर्षित कराऊंगी। तो एक सप्ताह में वो स्त्री क्या करती है, बहुत से लेक्सेटिव्स खाती है, खूब मल मूत्र और उल्टी त्यागती है और उन सबको बड़े बड़े बर्तनों में स्टोर करके रखती है और एक सप्ताह में कहते वो जो पुरुष है बहुत बहुत आशाओं से प्रतीक्षा कर रहा है, बस केवल एक सप्ताह रह गया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बस अब मैं मिलने जा रहा हूं और बस उसे संबंध स्थापित हो जाएगा। बहुत प्रतीक्षा के बाद, खूब तैयारी के बाद सज धज के जब उस स्थान पे जाता है एक सप्ताह के बाद, तो उस स्त्री को खोज रहा है कहां है वो। जब ढूंढता नहीं मिलती तो देखता है एक बहुत ही कमजोर सी बूढ़ी से दिखने वाली स्त्री, सारा शरीर जिसका काला पड़ गया है, आंखें अंदर ढह गई हैं। उससे पूछता है आपने कोई देखा यहां पे, एक बहुत सी युवती सी आना था, किसी देखा आपने। तो वो बोलती है वो मैं ही हूं। कहते नहीं नहीं आप कैसे हो सकती, वो बहुत सुंदर थी। बोली मैं ही वो स्त्री हूं, ये असंभव है, वो इतनी सुंदर स्त्री थी, तुम तो तुम्हारे तो देखने की इच्छा भी नहीं हो रही। तो उस स्त्री ने बोला तुम मेरी सुंदरता देखना चाहते हो? बोले हां। बोले मैंने अपने सुंदरता के जूसेस को रस को इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्या तुम उस सुंदरता के रस को चखना चाहते हो, उसका अमृत का आस्वादन करना चाहते हो? तो व्यक्ति वैसे इतना कामुक था, बोले सुंदरता का जूस कैसा होगा? बोले हां हां दिखाओ मुझे वो सुंदरता का जूस कहां है। बोले चलो मेरे अंदर साथ में। और जब वो स्त्री उस पुरुष को अंदर ले जाती है और उस कमरे में गंदगी और गंदगी इतनी बदबू दुर्गंध, उसको खुद को उल्टी आती है, बाहर आते हैं क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बोले यही है मेरे सुंदरता का जूस, चखना है इसको। प्रभुपाद जी कहते हैं ये है भौतिक सुंदरता। बिल्कुल इसमें कोई वास्तविक सत्य नहीं है। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भगवान ने अपने दिव्य सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया, ये है वास्तविक सुंदरता। तो फिर उस पुरुष की आंखें खुलती हैं और परम सत्य की ओर आकर्षित होता है। यह बहुत सब हम जिस जो पुरुष की हालत है, हम में से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अधिकांश सभी व्यक्तियों की यही हालत है, हमें संसार की सुंदरता से आकर्षित रहते हैं, लेकिन यह संसार की सुंदरता है ही नहीं, कृष्ण वास्तविक सुंदरता। क्योंकि हम नहीं जानते कि सब कारणों के कारण जन्मादि अस्यता सब कारणों के कारण कृष्ण है जो कि परम सुंदर है, उनकी सुंदरता में कोई विकार नहीं आता। विषम पितामह जब अपने शरीर को त्यागने वाले थे, तीरों के शैया में पड़े थे, तो कितना सुंदर तरीके से वो भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे कि कैसे जब आप युद्ध भूमि में थे और किस प्रकार से घोड़ों की पांव खुरों से जो धूल उठ रही थी उससे आपके बाल ऐसे हो गए जैसे राख में पड़े हो, लेकिन फिर भी कितने सुंदर लग रहे थे, किस प्रकार से पसीने की बूंदे थी और किस प्रकार से जो भीष्म पितामह ने तीर छोड़े उससे भगवान के ऊपर जो निशान बने खून के उससे वो भगवान की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। तो भगवान तो युद्ध भूमि में इतने सुंदर लगते हैं, और जब भगवान शाम को गाय चराकर भी आते थे तब भी वो बहुत सुंदर दिखते थे। तो हर स्थिति में भगवान की सुंदरता बनी रहती है, तो वो है परम सुंदर, और उस सुंदरता से हमें आकर्षित होना चाहिए। और इस संसार की सुंदरता तो किसी भी समय खराब हो सकती है ना। कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि कई कॉलेजेस में ऐसा होता था कि एक लड़का लड़की के पीछे पागल है, लड़की उससे प्रेम नहीं करना चाहती, तो उसने गुस्से में क्या किया, तेजाब की बोतल लेके उसकी सुंदरता को खत्म कर दिया। कई हम देखे, अगर आप कई हमारे मित्र थे वह बताते हैं कि जब वो किसी व्यक्ति को देखते हैं ट्रेन में, कोई सुंदर चेहरा दिखाई दिया तो बोले ठीक है इसको मैं टाइम मशीन में डाल दो, अभी ये ऐसा है आज से 10 साल 20 साल 30 साल के बाद कैसा दिखाई देगा, करके देखिए एक्सरसाइज, लेकिन सावधानी पूरा देखेंगे आप अपने आप देख लेंगे 30 साल के बाद ये चेहरा कैसा होगा, क्या इतना आकर्षक होगा? निश्चित रूप से नहीं होगा। कैसे धीरे धीरे चेहरा मुरझाएगा और कोई इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। तो ये सांसारिक सुंदरता है जो कि बहुत टेम्परेरी है, बहुत इल्यूजरी है, लेकिन वास्तविक सुंदरता है कृष्ण की और कृष्ण के भक्तों की। उद्धव जी भागवतम के 11 स्कंध में भगवान से पूछते हैं कि वास्तविक सुंदरता क्या है, तो भगवान उत्तर देते हैं वास्तविक सुंदरता है अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करना, यह वास्तविक सुंदरता है। संसारी सुंदरता तो बहुत ही अस्थायी है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक बहुत सुंदर दिखने वाला व्यक्ति जब तक चुप रहे वो सुंदर दिखता है, जैसे अपना मुंह खोलता है मालूम चढ़ता है कि बिल्कुल मूर्ख है, कोई भी उससे आकर्षित नहीं होता। लेकिन हो सकता है वो दिखने में कोई इतना सुंदर ना हो लेकिन ज्ञान में बहुत आगे हो, और जैसे वो बोलना शुरू करता है सब उससे आकर्षित हो जाते हैं। चाणक्य पंडित कहा करते थे जो पुरुष की सुंदरता है उसके ज्ञान में है, और स्त्री की सुंदरता है उसके सतीत्व में, और एक साधु की सुंदरता है उसकी क्षमाशीलता में। एक साधु सुंदर तभी माना जाता है जब वो क्षमाशील हो। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अच्छे गुणों को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे हम तब तक वास्तविक सुंदरता को प्राप्त नहीं कर सकते। और भक्ति में जब हम जुड़ते हैं तो हम जितना हम इस भौतिक कलमश को अपने हृदय से अपने चेतना से हटाते हैं उतना हम अपनी सुंदरता को प्राप्त करते जाते हैं। आप सोचिए जो व्यक्ति एक भौतिक चेतना में है वो कैसे सुंदर दिख सकता है। भौतिक चेतना का अर्थ क्या है? हमेशा भयभीत रहना, हमेशा चिंता में रहना, असुरक्षित रहना। ऐसा व्यक्ति जो असुरक्षित हो, भयभीत हो, चिंतित हो, वो सुंदर कैसे दिख सकता है? उसकी सुंदरता कैसे हमें आकर्षित करेगी? वो तो बेचारा खुद ही भयभीत है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम सुंदर होते जाते हैं। सुंदर किसकी आंखों में, किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि में। यही मनुष्य जीवन का, हमें इस संसार को आकर्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम संसार को आकर्षित कर लेंगे, कल यही संसार हमारी पिटाई करता है। ये संसार को आकर्षित करने का कोई लाभ नहीं है। किसको आकर्षित करना है? भगवान को आकर्षित करना है, वैष्णव को आकर्षित करना है। मुकुंदमाला स्त्रोत के 19वें स्त्रोत में राजा कुलशेखर बता रहे हैं कि जैसे जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने से किस प्रकार हमारी हर इंद्रियां सुंदर होती जाती है। कहते हैं कि वो जो सिर है वो सबसे यत कृष्ण प्राणीपत धूलि धवलम तद वश्म तद वै शीलास। जो सिर भगवान को प्रणाम करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। जिस सिर में पृथ्वी की धूलि लगी है भगवान को प्रणाम के कारण, वो सर्वश्रेष्ठ है। और वो आंखें सबसे ज्यादा सुंदर है जिसको अंधकार में त्याग दिया है क्योंकि इसने भगवान हरि का दर्शन कर लिया है। और वो बुद्धि बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल चांद की तरह या शंख की तरह चमकती हुई जिसने भगवान माधव पे अपना ध्यान लगाया है। और वो जीवा जो कि भगवान का गुणगान करती है वो अमृत की वर्षा करती है। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे हमारी इंद्रियां और सुंदर होती जाती है। श्रीला प्रभुपाद को जब भी विदेश में गए तो प्रभुपाद की आयु 70 वर्ष से भी ऊपर थी, लेकिन जो हिप्पी थी प्रभुपाद की सुंदरता से बड़े आकर्षित हुए। प्रभुपाद का जो त्वचा का रंग था एकदम ब्राउन कलर लेकिन चमकता हुआ, और प्रभुपाद के आंखों में एक अलग चमक, एक आशा की किरण उनको दिखाई देती थी। क्यों? प्रभुपाद ने सत्य के दर्शन किए हैं, प्रभुपाद की आंखों ने भगवान के दर्शन किए हैं, प्रभुपाद की प्रत्येक इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी है। तो इसलिए हमें किस प्रकार से एक भक्त के शरीर में परिवर्तन होता है ये आम व्यक्ति नहीं जान सकता, लेकिन एक भक्त जान सकता है कि दूसरे भक्त के शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रभुपाद जी बर्कले 1975 की बात है कि एक भक्त थे परीक्षित उनका नाम था, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में छोटे कृष्ण जो है वो नंद महाराज के पादुकाओं को ऊपर उठाए हुए हैं। तो प्रभुपाद ने देखा, बड़े बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अच्छी पेंटिंग है। और प्रभुपाद बोला, इसमें आपने अच्छा किया, कृष्ण के बाल बहुत लंबे नहीं बनाए, छोटे बनाए हैं। बोले जादू रानी जो है वो एक स्त्री है, उसको लंबे बाल दिखाना बड़ा अच्छे लगते हैं, तो जब भी वो कृष्ण के बाल बनाती है लंबे लंबे बनाती है। कई भक्तों ने देखा है जादू रानी ने यह भी बनाया पंचतत्व का, तो चैतन्य महाप्रभु के बड़े लंबे लंबे बाल थे। तो प्रभुपाद ने महाप्रभु को देखा इतने लंबे बालों के साथ, तो प्रभुपाद ने बोला, यस चैतन्य महाप्रभु वाज़ अ हिप्पी। और भी बोला कि ही केम हेयर टू सेव यू। तो महाप्रभु यहां पर आए आप सबको बचाने के लिए। अब प्रभुपाद जी का एक्सेंट बंगाली था तो भक्तों ने समझा कि महाप्रभु केम हेयर टू शेव अस, सेव का शेव समझ लिया। तो प्रभुपाद ने समझा कि लोग सही नहीं समझे, तो प्रभुपाद ने यस महाप्रभु केम हेयर टू सेव अस एंड शेव अस, सेव करने भी है और शेव करने भी है। तो हमने कहा जो हिप्पीज थे इतने गंदे रहते थे, लेकिन जैसे प्रभुपाद के संपर्क में आए सबने अपने बालों को कटवाया, सुंदर देखे। और जब वो प्रभुपाद के सामने तिलक लगा के आते थे तो प्रभुपाद कहते, यस दीज आर द एंजल्स फ्रॉम द वैकुंठ लोक, ना भी ये विष्णु दूत है। देखा, प्रैक्टिकली हमने देखा, और हम सब ने अपने आप को भी देखा। पहले हम यहां पर आते थे तो अधिकांशतः लोगों की दाढ़ी और मूछे होती थी, हमें याद, हम याद मूछे थे सबकी। तो हमें दिन आए कौ करते थे, कब उड़ा रहे हो, इशारा करते पीछे, उनको फॉलो करना पड़ता है नए भक्तों के साथ। बड़ा कन्विंस करना पड़ता है, कितना आकर्षण होता है, कितना आसक्ति होती है हमें अपने बालों से। नहीं मैंने ये मूछ नहीं हटाई ये मेरा जिसे कहते हैं ब्यूटी मार्क है, कोई नहीं हटाना चाहता। फिर हमें बताया उन्होंने, देखो ये सारे लोग जो दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब की मूछें थी अब किसी के नहीं रहे। तो देख के डर जाते थे, सहम जाते थे, लेकिन देखते हैं फिर उसके बाद किस प्रकार से हमारा हेयर स्टाइल भी चेंज होता है, हेयर बचता ही नहीं है, मूछें ही गायब होते हैं। और वास्तविक रूप से हम 12 तिलक लगाते हैं और यही हमारा वास्तविक श्रृंगार है। और किस प्रकार से भक्तों का खुद प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे भक्त निखर के सामने आते हैं, तो भक्ति के माध्यम से हमारी असली सुंदर। श्रीला प्रभुपाद जी चैतन्य चैतन्य के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जितनी शक्ति से कोई वैष्णव सदाचार का पालन करता है, उतना ही उसके चेहरे पे निखार आता है, एक दिव्य चमक होती है जिससे वो लोगों को अपने प्रति आकर्षित करता है। देखा हमने, है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, और जितना मन हमारा निर्मल होगा, शांत होगा, वो सुंदरता प्रकट होती है। तो जितना हम भक्ति की विधियों का पालन करेंगे, जितना हम अपने आप को भौतिक चेतना से ऊपर उठाएंगे, जितना हम भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाएंगे, उतना हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ेंगे और अपनी असली सुंदरता को प्राप्त करते जाएंगे। जब एक भक्त आच विग्रह का श्रृंगार करता है तो वास्तव में वो अपना श्रृंगार कर रहा होता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है। जो पुजारी जाके अच्छे ढंग से श्रृंगार करते हैं, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो अपने श्रृंगार से नहीं मिलेगी। क्यों? मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते थे, अगर हम अपने आप को अपने प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो अपने आप को सजाने के लिए किसको सजाना होगा? प्रतिबिंब को सजाना होगा, उसको देखकर ही मैं अपने आप को सजा सकता हूं। इसलिए अगर हम अर्च विग्रह का श्रृंगार करते हैं तो वास्तव में हम अपना सही श्रृंगार कर रहे हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो देखा जाए तो इस्कॉन एक प्रकार का ब्यूटी पार्लर है। इस्कॉन की तुलना हम हॉस्पिटल से भी करते हैं, स्कूल से भी करते हैं, लेकिन आज के इस कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं इस्कॉन इज अ रियल ब्यूटी पार्लर। यहाँ पे लोग कैसे आते हैं, कुरूप रूप में आते हैं, लेकिन सुंदर रूप में आके सीधा भगवत धाम वापिस जाते हैं, है ना। और यहाँ पे भी ट्रिमिंग की जाती है। यहाँ पे किसकी ट्रिमिंग की जाती है? फॉल्स ईगो की क्योंकि इस झूठे अहंकार के कारण ही हम अपनी सुंदरता को खोते हैं, अपने आप को पुरुष स्त्री मानते हैं, भारतीय अमेरिकन मानते हैं, लेकिन यहां पर बोलते हैं आइए। और ट्रिमिंग करने के यहां बड़े एक्सपर्ट भक्त होते हैं, हर एक भक्त दूसरे के लिए ट्रिमर है, और फॉल्सी को बहुत अधिक हो गई है, आइए। तो पूरा एक भक्त दूसरे भक्त की फॉल्सी को बड़े अच्छे ढंग से ट्रिम करता है, हमें नखार रहा है बेसिकली, नो ये हमें जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे उतना हम सुंदर बनेंगे। हालांकि जब उसको निखारा जाता है, तपाया जाता है, वो प्रोसेस थोड़ा सा कठिनाई वाला है, लेकिन उस कठिनाई वाले प्रोसेस को सह लेना चाहिए। वैसे भी इस संसार में सुंदर दिखने के लिए भी कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ती है, है ना। पता नहीं चेहरे पे क्या क्या लगाते हैं, पूरा दो तीन, पहले तो स्त्रियां जाती थी ब्यूटी पार्लर, आजकल पुरुष भी जाते हैं। और जाओ, कभी एक बार आए थे रोहिणी में, रथ यात्रा निकल थी पिछले साल, तो हमने देखा कि हमारे एक डोनर थे, वो भगवान के दर्शन करने के लिए ब्यूटी पार्लर से बाहर आ गए, और उन्होंने कोई ट्रैक सूट डाला हुआ था, बाल खड़े हुए थे ऐसे काले काले बच्चे, और पूरा चेहरा सफेद और काले रंग का ट्रैक सूट, पूरा चेहरा सफेद, कुछ क्रीम लगाई हुई थी, बाल भी ऐसे खड़े हुए थे कुछ, तो दिखने में बड़े भयंकर लग रहे थे लेकिन वो अलग बात थी, वो जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहते थे, तो उसी रूप में बाहर आ गए। तो कहने का अर्थ है कि इस उल्टे सीधे चेहरे को भी सुंदर दिखा बनाने के लिए कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, क्या क्या क्रीम लगानी पड़ती है, क्या उसको खोज के निकालते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं। तो इसलिए अपनी वास्तविक सुंदरता को प्राप्त करने के लिए भी ट्रिमिंग जो होती है भक्तों के संग में, उसे घबराना नहीं चाहिए। जो हमारे फॉल्स ईगो पे प्रहार होते हैं, उसी से वो हम अपनी वास्तविक ईगो को प्राप्त करेंगे, बस सुंदर हम बनेंगे और फिर भगवान को हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तो वैष्णव सदाचार ही हमारा असली आभूषण है। हम देखते हैं जैसे कि जितना हम मात्रा में वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे, उतना हम भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। चैतन्य चैतन्य में वर्णन आता है कि कि सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में थे तो वृंदावन से जब जगन्नाथपुरी में आए तो झारखंड के जंगल से होते हुए आए तो उनको एक बीमारी हो गई, पूरे शरीर में उनके पस पड़ गए, पूरे शरीर में फोड़े फूंसी और पस निकलते थे और वो बेचारे बहुत दुखी थे। वो सोचते थे इस शरीर से मैं क्या सेवा कर पाऊंगा, जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ रथ के नीचे आके अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो एक बार दोपहर में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को मिलने बुलाया टोटा गोपीनाथ में। तो सनातन गोस्वामी जब गए तो सिंह द्वार के रास्ते से नहीं गए, वो पीछे समुद्र के बीच के रास्ते से गए। सिंह द्वार के रास्ते से इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने देखा कि जब जगन्नाथ जी के पुजारी बाहर निकलेंगे तो किसी ने उनको छू दिया गलती से तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से दोपहर के समय नंगे पांव वो बालू में, गर्म बालू पे चलते हुए वहां पहुंचे। तो थोड़ा पहुंचने में लेट हो गए तो महाप्रभु ने पूछा कहां से आए, महाप्रभु तो सब जानते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैं समुद्र के रास्ते से आया हूं। तो महाप्रभु ने ऐसा क्यों, बोला मैं नहीं चाहता था कि कोई भी पुजारी मुझे छूकर दूषित हो जाए। तो महाप्रभु ने उनके इस वैष्णव सदाचार को देखते हुए इतने प्रसन्न हुए कि महाप्रभु ने तुरंत उनका आलिंगन कर लिया है ना। तो महाप्रभु इतना प्रसन्न किया, बोले तुम्हारे इस वैष्णव सदाचार, तुमने इस मर्यादा का पालन किया है, इसने मेरा हृदय जीत दिया, मैं इसे आकर्षित हुआ। तो हर परिस्थिति में हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए, इससे हम भगवान को अपने प्रति आकर्षित करते हैं और ये हमारा असली आभूषण है। जहां वैष्णव मर्यादा का उल्लंघन करते हैं हम भगवान के लिए आकर्षक नहीं रहते। तो ये हमें देखना है कि अपने आप भगवान को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, भगवान की दृष्टि में सुंदर बनने के लिए हम हमेशा वैष्णव सदाचार का पालन करें। और देखते हैं कि कृष्ण तुरंत सुंदरता प्रदान करते हैं, कौन सा आपको इंसिडेंट याद आता है? खूब चाह जब कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश करते हैं तो कुब्जा जो कि कंस के लिए चंदन बना के ले जाती थी और बिल्कुल महल के पास पहुंच ही गई थी और कुब्जा में त्रिभंग रूप था उसका भी, लेकिन उसका त्रिभंग स्ट्रेट था, उसकी जो कमर थी तीन भाग में झुकी हुई थी और भगवान भी त्रिभंग, लेकिन भगवान का त्रिभंग अलग रूप से सुंदर है। कुब्जा को भगवान ने देखा तो बोला चंदन मांगा, तो वो भगवान के स्वरूप से इतने आकर्षित हुई उसने तुरंत कृष्ण बलराम को चंदन लगाया और भगवान ने क्या किया, फिर एक्यूप्रेशर टेक्निक लगाया, अपना पांव उसके गुटे पर रखा और थोड़ा सा थोड़ी करके यूं किया, वो तुरंत एकदम सुंदर स्त्री बन गई है ना। बोले भगवान श्री कृष्ण की, तो कौन नहीं सुंदर बनना चाहेगा, भगवान की थोड़ी सी सेवा की भगवान ने तुरंत उनको सुंदर बना दिया। वास्तव में देखा जाए तो हम सब भी कुब्जा की तरह ही है। अगर बोले हम तो नहीं, हम तो कोई हमारे में विकार नहीं है, सीधा सीधी कमर है, लेकिन अगर हमारे सूक्ष्म शरीर का स्कैनिंग की जाए तो बहुत डेंट है उसमें, बहुत तरह तरह के तरह तरह जगह से वो मुड़ा हुआ है, तो उसको भी भगवान सीधा कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं अगर हम अपने को भगवान की सेवा में लगाए। इसी ढंग से वासुदेव जो कौड़ी था कौड़ का रोग गया था, पूरे समाज ने उसका तिरस्कार कर दिया, लेकिन वो हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता था। और जैसे ही कुर्म ब्राह्मण से मिलकर चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तो वही वसुदेव भगवान को चैतन्य महाप्रभु खोज में को पुकारता वहां पहुंचा, और जब उसको मालूम चला कि चैतन्य महाप्रभु चले गए तो जोर जोर से वो क्रंदन करने लगा और फिर महाप्रभु आए और उन्होंने इस वसुदेव का जिसको पूरे संसार में तिरस्कार कर दिया था, महाप्रभु ने क्या किया, उसका आलिंगन कर लिया और उसका आलिंगन करते क्या हुआ, वह एकदम सुंदर युवक बन गया। तो हम भी अगर भगवान हमारे अपने आप को इस योग्य बनाए, अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान भी हमारा आलिंगन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निश्चित रूप से हम भी अपनी वास्तविक सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की सुंदरता क्या है, कोई पूछ सकता है कि आत्मा की सुंदरता क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? सेवा, भगवान की सेवा की जो भावना है। हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में रामायण को सात कांडों में बांटा गया है। कौन कौन से कांड है? बाल कांड, जिसमें कि भगवान के बाल्यकाल का वर्णन हुआ, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो ये सारे कांड तो समझ में आते हैं, इन सात कांडों में सुंदर कांड का मतलब क्या है, ब्यूटी, ब्यूटीफुल। सुंदरकांड नाम क्यों रखा गया? बालकांड का तो नाम है कि बाल्य लीलाएं, अयोध्या कांड के अयोध्या में बहुत बड़ा कांड हुआ, अरण्य कांड में बल्कि भगवान वन में गए, उसके बाद सुग्रीव से मिले, उसके बाद फिर युद्ध कांड हुआ, युद्ध हुआ उत्तराखंड युद्ध के बाद की स्थिति। सुंदर कांड का नाम कैसे पड़ गया? सुंदर कांड, सुंदर कांड ये भी हो सकता है कि हनुमान जी गए। पूरे रामायण का सार सुंदर कांड बताया जाता है। आजकल कहीं भी आप जाएंगे भारत में, कई लोग केवल सुंदर कांड का पाठ करते हैं। तो ऐसी क्या विशेषता है सुंदर कांड में, क्यों इसका नाम पड़ा सुंदर कांड? क्या लंका की सुंदरता, लंका पूरे सोने की थी, तो लंका की सुंदरता को देख के इसका नाम सुंदर कांड रखा गया, या फिर इसमें इस सुंदरकांड में हनुमान जी राम जी की सुंदरता का भी वर्णन करते हैं, हो सकता है इसलिए भी रखा हो। इसी सुंदरकांड में हम देखते हैं माता सीता का सतीत्व का भी बहुत वर्णन है कि उनको कितने प्रलोभन दिए गए, कितना डराया गया, लेकिन सीता माता ने अपना सतीत्व बनाए रखा। तो क्या उनकी सुंदरता के कारण यह सुंदरकांड नाम रखा गया? लेकिन वास्तविक विद्वान और आचार्यों का कहना है कि सुंदरकांड कांड इसका नाम रखा गया भगवान हनुमान जी की सुंदर सेवा के कारण। किस प्रकार से उन्होंने इतनी कुशल सेवा की। सुंदर कांड को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला भाग, कैसे उन्होंने सीता मैया को खोजा। खोजना भी आसान नहीं था, वहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत बहुत जिसे कहते हैं उसके लिए उत्साह चाहिए था और बहुत हिम्मत चाहिए थी, और कितने राक्षसियों का वध करने के बाद और कितने महलों में यह सबको खोजने के बाद हनुमान जी बिल्कुल डिप्रेस हो गए थे। और फिर उन्होंने सोचा, भगवान का स्मरण किया, और फिर अशोक वाटिका उनको ध्यान आया, हाँ इनके यहां पर सीता माता हो सकती है। खोज करने में ही कितना भगवान हनुमान जी फोकस रहे, कितनी हिम्मत दिखाई, कितनी कुशलता दिखाई। तो ये पहला था। खोजने के बाद अब उनको सीता मैया का विश्वास जीतना था। सीता मैया बिल्कुल हतोत्साहित हो गई थी और किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि रावण रोज नया नया रूप लेकर उनके सामने आता था। अब वो कैसे है सीता माता को ये विश्वास दिलाए कि मैं राम का भेजा हुआ दूत हूं? सीधा ही पहले अंगूठी फेंक देते तो बोले तो रावण की चाल है, वो तो कुछ भी कर सकता है। सीधा बोलते मुझे राम ने भेजा, तब भी नहीं मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ के ऊपर बैठ के राम का गुणगान किया ना, राम की सुंदरता का वर्णन किया, तो जिससे उन्होंने सीता माता का विश्वास धीरे धीरे जीत लिया। हमें देखते हैं भक्ति के मार्ग में विश्वास बनाना, ट्रस्ट बनाना बहुत लंबा समय लेता है और तोड़ने में कुछ भी समय नहीं लगता। एक वृक्ष को बड़ा वृक्ष बनने में 20 से 30 साल लग जाते हैं, लेकिन उसको काटना हो तो क्या है, आधे घंटे में वृक्ष को काटा जा सकता है। तो सीता मैया का विश्वास जीतना हनुमान जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन भगवान का गुणगान करके उन्होंने धीरे 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 सीता मैया का विश्वास जीता। ये दूसरा भाग। और तीसरा भाग था कि उन्होंने पूरे रावण और उसकी सभा को दिखाया कि ये आप देख लो आगे क्या आने वाला है, जब उन्होंने पूरी लंका को आग लगाई तो सैंपल दिखाया, ये तो मैं अकेला हूं इतना कुछ कर सकता हूं, आगे देखो अब तुम्हारी क्या शामत आती है। तो ये तीन भाग थे। तो इस ढंग से सुंदर कांड का इसका नाम रखा गया हनुमान जी की सुंदरता के कारण। सीता मैया की तुलना हम एक बद जीव से भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब सीता माता पंचवटी में थे और मारिच बन के आते हैं एक हिरण के रूप में, राम और लक्ष्मण दोनों समझ जाते हैं कि ये एक मायावी हिरण है। 84 लाख योनियों में ऐसा कोई हिरण नहीं है, सोने और चांदी का मिक्सचर और बहुत ही सुंदर दिखने वाला ऐसा कोई हिरण नहीं है। लेकिन फिर भी सीता माता राम की वहां उपस्थित होते हुए भी उस मायावी हिरण से आकर्षित हो गए, और वहां वाल्मीकि लिख रहे हैं अभिराम, यानी कि वो हिरण उन्हें राम से भी बेहतर लगा और उन्होंने राम को उस हिरण के पीछे भेज दिया, जो कि था ही नहीं माया। और लक्ष्मण जी भी बोल दे रहे हैं, जो कि गुरु आदि गुरु हैं, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी और उनको बोला नहीं तुम्हारी कोई अलग ही इच्छाएं हैं, इसलिए तुम राम की रक्षा के लिए नहीं जा रहे। तो सीता माता को हम उस बद जीव से उसके हम तुलना कर सकते हैं जो कि भगवान से अपनी इच्छा माया के प्रलोभन से भगवान से विमुख हो गए, और कृष्ण भोलिया जी भोगवांछा करे निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे, और तुरंत रावण ने उनको झपट के पकड़ लिया। और उसके बाद वो वर जीव भगवान से मिलना चाहता है वापस, लेकिन कोई रास्ता नहीं जानता, तो उसके लिए हनुमान जी पूरा समुद्र पार करके गए और उनको बताया किस प्रकार से वो अपने राम से वापस मिल सकते हैं। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी समुद्र पार करके गए, जैसे हनुमान जी अकेले गए थे, श्रील प्रभुपाद जी भी अकेले गए, 70 वर्ष की आयु में अकेले गए, और वहां पर भी न्यूयॉर्क भी सोने का शहर था, सोने की लंका के समान था, इतना ऐश्वर्य वहां पे, और सारे के सारे बद जी भगवान को भूले हुए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन सबको, उन सबका विश्वास जीता। चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया और चैतन्य महाप्रभु कृपा दी और सबको फिर क्या हुआ, सुंदर बना के वैष्णव बना के वापिस वृंदावन लेके आए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ये है कैसे प्रभुपाद जी कृपा से सारे के सारे पद जीव अपने उन्होंने वास्तविक सुंदरता को प्राप्त किया। ये हमारे इस्कॉन का है सुंदर कांड, जो 50 साल हम मना रहे हैं इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से। तो हम देख सकते हैं कि एक जीव की वास्तविक सुंदरता है भगवान की सेवा में रत होना, वैष्णव सदाचार का पालन करना, सही तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र का सावधानी पूर्वक जप करना, अध्ययन करना, भक्तों के संग में रहना ना? और इससे क्या होगा, हम अपने मिथ्या अहंकार को त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जब बढ़ते हैं, जितना हम भौतिक कलमश से मुक्त होते जाएंगे उतनी वास्तविक सुंदरता को प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ हमें मनन करते रहना चाहिए कि संसार की सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है ना? और ये बहुत ही इल्यूशनरी है, हमें भ्रम में डालती है। और जितना हम भगवान की ओर अपने को अपने आप आकर्षित कराएंगे, भगवान भी हमारी सेवा की भावना से हम भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं और फिर अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की एक शिष्य थी रुक्मिणी माता जी, जो पिछले 1-2 महीने पहले आई भी थी यहाँ पे, और आपको याद हुआ इस प्रसंग का वर्णन। रुक्मिणी माता जी बहुत 16 साल की थी तभी उन्होंने दीक्षा ले ली थी, और जब वो दीक्षा लेने आई और प्रभुपाद जी उनको बेड्स देने लगे, तो प्रभुपाद जी ने उनको देखा और देखते बोला, ओ यू आर सो ब्यूटिफुल, नाउ प्लीज ट्राई टू बी ब्यूटिफुल फ्रॉम विद इन, आप इतनी सुंदर हैं अब कृपया करके आंतरिक रूप से भी आप सुंदर बनिए। तो रुक्मिणी माता जी कहती हैं कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं मेरे लिए लाइफ लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस हैं, मेरे लाइफ का मिशन है कि कैसे मुझे अब आंतरिक रूप से सुंदर बनना है। तो वास्तव में वो केवल रुक्मिणी माता जी के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो इंस्ट्रक्शन हम सबके लिए भी है। हम सब में कई भक्तों ने दीक्षा ले रखी है, दीक्षा का मतलब यही है कि हम शुरुआत करें अब अपने आप को सुंदर बनाने की विधि को। अब हमने आपको सुंदर बनाना, ये हम सबका वास्तविक मिशन होना चाहिए, है ना? जितना समय हम गवाते हैं जिम में जाके इस पूरे शरीर की देखभाल करिए कि शरीर सुंदर बना रहे, और उतना अटेंशन हम अपनी चेतना में देंगे कि किस ढंग से अपनी चेतना को सुंदर बनाना है, तो निश्चित रूप से भगवद्धाम चले जाएंगे। यस, इस शरीर को भी सुंदर ठीक स्वस्थ बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन वास्तविक सुंदरता तो आत्मा की सुंदरता है, वास्तविक सुंदरता हमारी चेतना है। उस चेतना को जितना हम शुद्ध रखेंगे उतना हम भगवान की दृष्टि में सुंदर बनेंगे। तो यही हमारे लाइफ का मिशन होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे आंतरिक रूप से हम अपने आप को सुंदर बनाएं। और आंतरिक सुंदरता है अपने अंदर सेवा की भावना को विकसित करना, और इस सेवा की भावना को हम विकसित कर सकते हैं सही ढंग से सब वैष्णव सदाचार का पालन करके और भक्तों का संग करके। हरे कृष्ण। हाँ, जब तक इस भौतिक संसार में ये भावना तो बनी रहती है डर की और असुरक्षित होने की, और पदम पदम यत विपदम, कभी भी किसी किसी में कुछ हो सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान है भक्तों का संग। हम सब ने अपने व्यवहारिक अनुभव से भी देखा होगा, जब तक हम भक्तों के संग में रहते हैं संसार की बड़ी से बड़ी समस्या से हम विचलित नहीं होते, हम अपने आप को संभाल लेते हैं। मोस्ट सिक्योर प्लेस इज टू बी ऑलवेज इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो हमेशा भक्तों के संग में रहे तो बड़े से बड़े संकट से हम निकल जाएंगे। संकट तो आएंगे निश्चित रूप से, संसार का ये प्रकृति है। यस ये मना नहीं किया नहीं, आप ये गलत ढंग से आपने सुना, क्षमा करें, हमने मना नहीं किया। हमने बोला शरीर को स्वस्थ रखना भी ठीक है लेकिन पूरा फोकस इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। बस ये है कि स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं स्वास्थ्य साधना सेवा और संबंध सब पे में ध्यान देना है। सबसे पहले स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, गाड़ी ठीक नहीं होगी, आप साधना कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड ये है आपकी 16 माला ध्यानपूर्वक होने चाहिए, कम से कम 1 घंटा रीडिंग हीलिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप देखिए आपका व्यवसाय है उसके बाद।
तो वो एक जिम से कम नहीं होता है कि भगवान के अंतर्मन चलते रहते हैं भगवान का नाम और हम करते हैं, और अगर थोड़ा सा और किया जाए ढंग से तो जिम से कई गुना बेटर है। आप
नाचना बिल्कुल सही बात है।
वहां जाते हैं तो मसल्स बनाना होता है, यहाँ माइंड को भी बनाना है, शुद्धता की बात होती है। तो प्रभु जी के क्वेश्चंस के मतलब इसी में है कि आप इसको डांस कीजिए और स्नेह कीजिए।
सेवा में रुचि सेवा करके बैठे बैठे तो बढ़ेगी। ओके यस मैच।
मेरी पहली क्लास में मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अर्जुन के सामने, जैसे भगवान कृष्ण को अर्जुन के सामने थे तो फिर भी मतलब उन्होंने जब हम भगवान के सामने थे फिर भी उन्होंने मतलब द्रौपदी से शादी हो गई जब भगवान खुद उनके सामने थे तो वो फिर मतलब उनका मन और किसी की तरफ क्यों रहा।
भगवान जब सामने थे तो द्रौपदी की प्रति वो आकर्षित क्यों हुए? चार्ज हो गए। तो देखिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं है कि आप विवाह नहीं कर सकते, या फिर हर आश्रम का इसमें प्रयोजन है। हर किसी भी आश्रम में स्थित रह के हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, और अर्जुन के माध्यम से द्रौपदी के माध्यम से भगवान ने बहुत सी लीलाएं संपन्न कराए। भगवान यहां प्रकट होते हैं अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, और अपने पार्षदों के माध्यम से ही भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, सिद्धांत स्थापित करते हैं। तो इसलिए ये भगवान की योजना है, ये भक्त है, ये सब एक ड्रामा है। और ऐसा नहीं कि अर्जुन मोहित हो गए उनसे, कृष्ण से प्रति उनका आकर्षण कम हो गया। कृष्ण के प्रति आकर्षण भी बना रहता है, लेकिन हम सब जीवों को शिक्षा देने के लिए ये सब लीलाओं की रचना की जाती है। अगर द्रौपदी पांडवों से विवाहित नहीं होती तो कैसे फिर महाभारत का युद्ध होता, कैसे गीता का संदेश दिया जाता, कैसे ये हमें स्थापित किया जाता कि गीता का संदेश गृहस्थ आश्रम में रहकर भी पालन किया जा सकता है। अन्यथा अगर अर्जुन ने विवाह ही ना किया होता, बोले नहीं नहीं तो गीता का संदेश केवल सन्यासियों के लिए ही है। भगवान ने धर्म को और व्यवहारिक और प्रैक्टिकल रूप स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। यस माता जी, सामान्यता नहीं, लेकिन कोई विशेष केस में हाँ जरूरत भी पड़ सकती है। सामान्यता नहीं, लेकिन देखा जा सकता है कि कोई विशेष परिस्थितियां हो तो इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है, केस टू केस। हाँ जी बिल्कुल, हाँ सामान्य तो नहीं है। नहीं नहीं, तो आपको कोई अलग विशेष परिस्थिति होगी तो विशेष परिस्थिति आप अलग से बता सकते हैं, सामान्य तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जो हमें लगता है कि हम हर परिस्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें, वैष्णव सदाचार, हर परिस्थिति में वैष्णव सदाचार के अंतर्गत रहेंगे, मर्यादा के अंदर रहेंगे, तो उससे भगवान को आकर्षित करेंगे। और जैसे परम पूजनीय गोपाल कृष्ण साई महाराज आए थे, वो बता रहे थे कि वैष्णव और प्रादों से हमें डरना चाहिए और दूसरों के गुणों को देखने का प्रयास करें और अपनी कमियों को देखने का प्रयास करें। यस कर लो जी। एक बार मायापुर में थे और मायापुर में हमें संग मिला था हिजोरिनस भक्ति विकास स्वामी महाराज का। हम यूथ फ्रॉम के डिवोटी से बहुत ही चिट्स भेजी ना, क्वेश्चन भेज के, हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी टॉलरेंट, हाउ टू बी दिस, हाउ टू बी, बाई चांस बड़े हाउ 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 आ गया उसमें, तो हाउ टू बी फॉर गिविंग ना, तो महाराज ने पढ़ा, बोला जितने भी हाउ टू सीरीज के ये जो क्वेश्चन थे इन सबका एक ही उत्तर है, अटेंटिव चैंटिंग। जितना हम अटेंटिव चैंटिंग करेंगे, ऑल दीज गुड क्वालिटीज विल ऑटोमेटिकली अपीयर इन आवर हार्ट। आंसर ही चलिए लास्ट क्वेश्चन। हमें ये नहीं सोचना मैं आ जाऊंगा मैं भाई अब तो उठा के कैंची सबको ट्रिम करता रहूंगा, ये नहीं है, है ना। प्रणाद भी सुने चाहिए, हमें हमारे ऊपर सब रोन के चले जाए, ये सबसे अच्छा है हमारे लिए, हमारी ईगो के लिए सबसे अच्छा है कि हर कोई हमें रोन के चला गया। लेकिन कई बार मिशन की सेवा के लिए हमें ऐसा रोल लेना पड़ता है कि हमें रोना पड़े, हमें वो रोलर का काम करना है, तो वो निर्भर करेगा गुरु के आदेशों पर, हायर अथॉरिटीज के आदेश अगर ऐसे हैं तो। लेकिन वो भी काम किया जा रहा है सेवा की भावना के साथ, मुख्य पीछे जो इसके देखा जाएगा हमारी चेतना देखी जाएगी, बाहरी रूप से नहीं देखा जाएगा। हो सकता है कोई रोलर का काम कर रहा है, कोई ट्रिम करने की सेवा कर रहा है, लेकिन वो सेवा है। और हो सकता है जो अपने आप को ट्रिम करवा रहा हो उसका अहंकार उससे ज्यादा हो कि देखो मैं कितना विनम्र हूं, है ना। तो ये सब चेतना की बात है, आंतरिक भावना है। लेकिन हमें यहां पर आना है, भक्तों को प्रसन्न करना है और भगवान को प्रसन्न करना है, चेतना से आना है। उसके लिए हमें जितने भी जितने ज्यादा मानसिक कष्ट होंगे, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज बहुत लंबी है, तो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में हमें यह नहीं देखना चाहिए कि मैं कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। हमारे कंफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कंफर्ट तो हमारे मन जो मन चाहेगा वो होगा, तभी हम कंफर्टेबल होंगे। चाहे हम बहुत अनकंफर्टेबल कंडीशन में हों, लेकिन हो सकता है हम भगवान के बड़े आकर्षक हों उस समय, क्योंकि हमारे अंदर उथल पुथल मची है, हमारी कंडीशनिंग क्या है और हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें एडजस्ट करने मुश्किल हो रही है, लेकिन वो स्थिति हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आप समझ रहे तो समूह देखे ना देखे उसकी परवाह मत करो। ये आप सोच रहे हैं कि वो मेरे चेतना समझ रहा है नहीं समझ रहा तो पागल हो जाएंगे। हम अपनी चेष्टा, अगर हमारी चेतना ठीक है तो हमारी चेष्टा में उसकी अभिव्यक्ति होगी होगी। हम ये नहीं कह सकते नहीं मेरी इंटेंशन तो ठीक है, मेरे एक्शन गलत है, बार बार ऐसा नहीं कह सकते। इंटेंशन और एक्शन दोनों में मैच होना चाहिए, ठीक है ना। प्रयास कीजिए हो जाएगा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।